मारुई सन 1300 ईस्वी में सिंध के हसीन रेगिस्तान थर में जन्म लेने वाली लड़की, जिसने बादशाह वक्त उमर सुमरों की मोहब्बत को अपनी जमीन से वफा और अपने बाबुल की आबरू की खातिर ठुकरा दिया, मगर उसकी ताकत के सामने सर नहीं झुकाया। वही मारुई आज भी किसी न किसी रूप में अपनी जमीन के फरसूदा निजाम के खिलाफ नबर्दाजमा है।
क्या कर रहे हो तुम लोग?
बिस्मिल्लाह साहिब, बिस्मिल्लाह। भले भाग हमारे जो आप आए जमीनों पर।
भले, कितना जवान हो गया है तुम। ए रब के शुक्राने, आज हमारे साईं का बाह बेली आया है जमीनों पर।
तुम खुदा बख्श चाचा हो ना?
अरे वाह मुझा साई, वाह, तुमने तो हमको पहचान लिया।
खुदा बख्श चाचा, तुम तो बिल्कुल भूरे हो गए हो।
अरे बाबा, तू भी तो जवान मर्द हो गया है ना।
छोटे साई, वडेरे साई को अब छोड़ दो, जाकर इलेक्शन विलेक्शन लड़े, गरीब गुरबा से वोट ले। अब तो अपने पैरों को रखो इन जमीनों पर।
साई, हमारी आंखें तेरे पैर।
तुम लोग सब वैसे के वैसे हो, बिल्कुल नहीं बदले।
भला आदमी भी बदलता है क्या बाबला? एक बार जिस सांचे में घड़ा गया, बस वो सही रहता है।
दुनिया में सब कुछ बदल गया है। इंसान को चांद पर पहुंचे हुए भी कई बरस हो गए। अब तो इंसान ने मशीनी दिमाग बना लिया है। कंप्यूटर कहते हैं उसे, कंप्यूटर जानते हैं उसे?
सब कुछ जानते हैं बाबला, सब पता है। ये सारा अंग्रेज का रचाया हुआ नाटक है। अरे बाबा, कहां बेचारा इंसान,
कहां चांद। अरे बाबा, इस नाटक की दुनिया में तो आदमी का ही मगज फिर गया है। छोटे साई, भला मशीन का मगज क्या काम करेगा।
चलो चलो,
यार बिल्कुल नहीं बदला, हर चीज की तरह बिल्कुल वैसे के वैसे।
अरे नहीं,
क्या?
अरे यार मना करो इनको, ये क्या करें आप लोग?
अम्मा अम्मा, देखो तो कौन आया है।
मेरा भतीजा आया है। बिस्मिल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बेशक के तू कितना बदल गया है।
वाकई?
हाँ। आ बैठो। कैसे हो बेटे?
बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं पूजा?
मैं अच्छी। तुम सुना, कब आया अमेरिका से?
बस कुछ दिन हुए।
बड़ा जालिम है तेरा बाप, इतनी दूर प्रदेश भेज दिया है तुझे और जरा भी परवाह नहीं है उसे।
अब आप तो ये हमेशा के लिए वापस आ गया अमेरिका से।
अच्छा, या अल्लाह तेरा शुक्र है बेटा, आंखें तरस गई थी तुझे देखने को।
पप्पी जान, मैं भी तो बहुत याद करता था आप लोगों को।
हाँ क्यों नहीं, आखिर तो खून है मेरा। ये अदासाई भाभी और मेरी बेटी नहीं आए?
हाँ फिलहाल मैं अकेला आया हूँ।
सब अच्छे तो है ना?
बिल्कुल ठीक ठाक थे और बहुत बहुत सलाम कह रहे थे आप लोगों को।
वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह खुश रखे सबको।
अम्मा अब तो उसको चाचा साईं ने जमीनें संभालने का भी कह दिया है।
अरे ये तो बहुत ही अच्छा किया, यही शान है हमारी बेटे। अरे ये नौकरी तो गुलामी की टोकरी होती है।
अच्छा।
ये टोकरी तो गरीब गुरबा उठाते हैं, हमारा तो मर्तबा ही और है।
ऐसे फूफी जान अब बिल्कुल बाबा जैसी बातें करती हैं।
क्यों नहीं, आखिर बहन हूं उसकी।
अच्छा कहाँ है चाचा साईं?
हाँ तेरा चाचा अभी अभी उताक की तरफ निकला है, उसको हवेली में कहाँ सुखाता है।
क्यों?
हवेली में मैं जो बैठी हूँ।
अच्छा ये अच्छी बात।
सीख जाओगे बेटा सीख जाओगे। जब ये पैरों में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े तुम्हारे पैरों पर अपने पंजे गाड़ने लगेंगे ना, तो आप ही आप तुम्हारे अंदर से सरदार अली नवाज खान सुमरो का बेटा सरदार उमर खान निकल आएगा। अभी तो तुम्हारे ऊपर से विलायती पॉलिश ही नहीं उतरी है बेटा।
चाचा साईं लगता है बाबा ने कम से कम टेलीफोन पर आपसे मेरी शिकायत जरूर की होगी।
अरे मियां क्या पूछते हो, बचपन हमारा साथ गुजरा है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ। तुम तो फिर उसकी औलाद हो ना, ये सियासत और शुगर मिलों के चक्कर में तुम्हारा बाप शहर जाकर बस गया है। शादी भी उसने वहां सरदार गुलाम मोहम्मद खान की बेटी से कर ली। मगर बेटा इस तरह क्या कोई अपनी जड़ों से कट जाता है? नहीं। देखो मियां अमेरिका तो क्या, पूरा यूरोप भी तुम एक घूंट में पी जाओ, मगर रहोगे तुम वही जो तुम हो।
बाबा ये है वो छोरा जो गोदाम से हर रोज रात को चोरी करता है, और तो और बाबा साहिब ये होटल में बैठ के आप लोगों के खिलाफ बातें भी करता है, बोलते भी करता है।
अरे ये सब कुछ क्या है भाई, इसे रोकी नहीं है।
ये चोर है बेटा, ये चोर है। उधर थर में जब ये लोग भूखे मरते हैं ना, तो ये नौकरियां करने के लिए आबादी में आ जाते हैं, और जब थोड़ा सा पेट भर जाता है नौकरियां करते हैं। चोरी है।
चाचा साईं ये लोग गंदम क्यों चोरी करते हैं?
अरे बाबा भोग,
बाबा
इसको यहाँ क्यों लेकर आ गए हो? उधर ले जाकर इसको सजा बजा दो, तो उसको पता चले कि ये क्या चीज है।
ठीक है बाबा। अरे उठ उठ चोर की औलाद, उठ। वो डेरों के खिलाफ बोलते हो, किसे बोला जाता है?
ले जाओ इसे, ले जाओ।
अरे नहीं मारो इसे, यहाँ पर। चाचा साहब प्लीज आपने रोकिए,
बैठो बैठो
अकबर यार।
बैठ जाओ अमर, बैठ जाओ बैठ जाओ
बैठ।
ये विलायत नहीं है, यहाँ अपनी हैसियत मनवाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, वरना ये दो टके की मखलूक हर वक्त सर पर चढ़ कराने को तैयार रहती
है। इन्हें रोकिए चाचा।
कुछ नहीं है बेटा, ये रोज का मामूल है, तुम क्यों परेशान हो? कुछ नहीं है, बड़ी मामूली
आप प्लीज अंदर आइए।
जी वो लैला को ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ रही थी।
हाँ यहीं कहीं होगी, असल में मैं खुद अभी आया हूँ, आप अंदर थे।
जी
सॉरी, मैं लाइट काफी देर से गई थी।
लीजिए लाइट भी आ गई, आइए ना
जी। मैं आप प्लीज लैला को बुला दें
जी। मैम
ओ मालवी कैसी हो? ओहो बंदूक और फूल क्या कॉम्बिनेशन है। चलो मैं इधर क्यों खड़ी हो? एक तो मेरा भाई बहुत बेमुरबत है, तुमको बैठने को तो नहीं बोला होगा ना। आओ आओ ना बाबा आओ, बैठ जाओ।
तुम दो दिन से हो कहाँ? ना यूनिवर्सिटी में मिलती हो ना हॉस्टल में।
अरे बाबा भाई की मोहब्बत में घर आकर बैठ गई हूँ, पता चला भाई साहब खुद शिकार खेलने जमीनों पे गए। अभी सोच ही रही थी चलो मिस लैला वापस अपनी पनागाह पर, बस तुम आ गई। अरे ये फूल क्या मेरे मजार पे डालने आई हो?
नहीं ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था ना, आज पहला दिन था, उनको मैं अच्छी लग गई, तीनों ने वापसी में फूल दे दी।
बड़े रोमांटिक बच्चे। अरे अदा आपका शिकार कैसा रहा, परिंदों का क्या या इंसानों का?
हाँ असल में वहां जाकर पता चला कि यहाँ तो इंसानों का शिकार भी होता है।
आप तो बच गए ना?
हाँ फिलहाल। अम्मा कहाँ हैं?
अम्मा एज यूजुअल गई होंगी किसी इनॉग्रेशन पे।
लैला
जी
प्लीज जरा गरम गरम कॉफी तो पिलाओ, रियली बहुत थक गया हूं।
जी अदा बस बख्शू। उफ पता नहीं कहां चला जाता है कि मारवी। मैं अभी आ रही हूं, खिसकना नहीं यहां से, बस यूं गई यूं आई। अदा आप तो बैठ रहे हैं।
वैसे लैला बहुत तारीफ करती है आपकी, वो तो बस पागल है आपके लिए।
जी शुक्रिया।
अच्छा लैला बता रही थी कि आपका गांव थरपारकर में है।
जी
हाँ असल मैं वहीं से आ रहा हूँ, मिट्टी है ना उससे आगे हमारा गांव है।
अच्छा
जी वापसी में सारे रास्ते यही सोच रहा था कि यहां इंसान की क्या कीमत होगी।
कम से कम एक कौड़ी और ज्यादा से ज्यादा एक प्याला साफ पानी और मुट्ठी भर गंदम और बस। लेकिन आप लोगों के लिए तो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ज्यादा और कुछ नहीं।
हाँ, हम लोग ऐसे जो इनकार जो बगावत आपके लहजे में ना, ये चीज मुझे वहां बिल्कुल नहीं मिली। 10 साल बाद वहां गया था, पता चला सब कुछ वैसे का वैसा है, कोई डरे हुए सहमे हुए पैरों को छूते हुए हाथ बांधे हुए वही बनी जैसे वढेरों से उधार ली हुई जिंदगी। माय गुडनेस किस खुशफहमी में था मैं।
जो भी शहर से वहां जाता है यही सोचकर लौट आता है। अभी तो आप थर के अंदर नहीं गए, वहां भूत ने लोगों को टीबी का मरीज और रात का अंधा बना दिया है। कुएं से पानी खींच खींच कर निकालने वाली औरतें, उनके तो कांधों तक का गोश्त उतर जाता है।
कॉफी हाजिर है।
थैंक्स।
वो मालवी, ओ कहाँ गुम हो गई हो?
कुछ नहीं। अभी तो आप घर के अंदर नहीं गए, वहां भूत ने लोगों को टीबी का मरीज और रात का अंधा बना दिया है।
तेरा बच्चों को तो भेजना।
मेरा भी तो सुबह ही हॉस्टल चलेगी।
अच्छा,
उमर साहब तो सो रहे हैं, अभी उठे ही नहीं।
अभी तक नहीं उठे?
जी नहीं उठे।
अली नवाज, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि हमारी बेटी इतनी आजादी से हॉस्टल में रहे। आप समझते क्यों नहीं, हम लोग कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, अपनी बेटी को आजादी नहीं दे सकते।
देखो मैरू, तुम्हें उसको हॉस्टल रहने पर एतराज है और मैं उसको बाहर भेजने के लिए सोच रहा हूँ।
कोई जरूरत नहीं, पूरा यूरोप घूमकर आइए वो, और फिर बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जरूरत क्या है उसे, आखिर तो उसे शादी करनी है ना।
एक तो तुम्हें शादियों का बड़ा शौक है।
जाहिर है, माँ हूं उसकी, आपसे ज्यादा मुझे उसकी फिक्र लगी रहती है। अली नवाज, बेटियों को इतनी ढील मत दो कि कल वो हमारी पसंद की शादी से इनकार कर दे और किसी ऐसे लड़के के लिए हमें मजबूर करे जो हमारे स्टेटस का ना हो।
हाँ, ये बात है।
ये तो ले
क्या पका रहे थे?
सब्जी।
ओह वंडरफुल। हेलो यंग मैन।
हेलो।
आओ बेटा बैठो।
थैंक यू।
क्या बात है, रात को सोई नहीं ठीक था?
हाँ महबूब, नींद नहीं आ रही थी मुझे।
बचपन में ना रात को बिजली से तुम डर जाया करते थे, लेकिन अब तो तुम्हें आदी हो जाना चाहिए।
अरे हाँ मैडम, वो मैं बताने भूल गया, वो सुबह को आशिक अली खान का फोन आया था, उसने कहा कि तुम्हारा बेटा नाराज होकर चला है।
क्यों
भाई? वहां पर किसी लड़के ने चोरी वोरी की होगी, उसे मारा पीटा होगा, तो रईस अली नवाज सुमरो का बेटा उमर सुमरो वहां से खफा होकर चले आए।
लेकिन बेटा ये तो ऐसी कोई बात नहीं थी।
लेकिन अम्मी मैं इस सारे तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहता। बाबा हम इससे क्या साबित करना चाहते हैं, अपनी ताकत या दूसरों की बेबसी?
I'm sorry. आज सचमुच मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, तुम्हें बाहर नहीं भेजना चाहिए था मुझे। ड्राइंग रूम में बैठ कर फलसफा बोलने वाले इस मुल्क में बहुत सारे नौजवान मिल जाएंगे, लेकिन जिसके एक एक लफ्ज में ऑर्डर हो, दोनों हाथों में पावर हो, आई हैव लॉस्ट माय यंग बॉय, मैंने अपना नौजवान बेटा खो दिया है।
आप क्यों खफा हो रहे हैं? ऐसे ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। बचपन से आपने उसको अपने से अलग कर दिया, जाहिर उसका नतीजा तो ये होना था। बेटा आप खाना नहीं खा रहे, देखो तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई खास तौर पे।
नहीं नहीं मैम, मैंने बिल्कुल जी नहीं कर रहा।
हम सब एक जैसे होते हैं, गरीब अमीर सबकी इज्जत
एक जैसी होती है।
सिर्फ अल्लाह साईं के सामने झुकना चाहिए, दूसरों के आगे सर उठाकर चलना चाहिए।
और मास्टर कैसा चल रहा है तुम्हारा स्कूल?
सही दुआ है आपकी,
बाबा ने भेजा है तुम्हारे पास एक काम से।
हुकुम सही हुकुम।
मास्टर बाबा ने कहा है कि कल से ये स्कूल बंद कर दो, बच्चों का इंतजाम कहीं और कर दो।
जी
हाँ, मसलन को गोदाम की जरूरत है।
पर सही ये तो गवर्नमेंट का मंजूर शुदा स्कूल है सही।
मास्टर गवर्नमेंट जाने हम जाने, ये हमारा आपस का मामला है, तुम कल से स्कूल खाली कर दो।
ये बच्चे कहां पढ़े?
ये पढ़ेंगे, इनके बाप दादा परदादा हमारे गुलाम थे और ये भी हमारे गुलाम है, हमारी मर्जी हमें पढ़ने दे या ना दे। अरे चलो बाबू अपने अपने घर जाओ, चलो।
बैठो बैठो, क्या हो रहा था?
सुबह हॉस्टल जाना था, उसी की तैयारियां कर रही थी। हाँ बाबा, वो कुछ बाहर की यूनिवर्सिटी से फॉर्म्स आ गए, आपने कहा था ना, ले आओ।
वो बेटा
क्या बात है बाबा?
बेटा बात ये है कि पहले एमए तो कर लो ना, बाहर का बाद में सोचेगी। बात ये है कि तुम्हारी अम्मी है ना, उनको तुम्हारा हॉस्टल में रहना अच्छा नहीं लगता। तुम ऐसा करो, अपना सामान लेकर यहाँ चली आओ।
मगर बाबा, इस घर में दिन भर और रात गए तक होता ही कौन है, सिवाय नौकरों के और तनाई के।
बेटा, लड़कियां घर में अच्छी लगती हैं, चाहे उनको तन्हाई के साथ रहना पड़े या नौकरों के साथ। बस कल तुम सामान अपना ले आओ यहाँ पे।
मगर अम्मा, मैं वहां बेहतर पढ़ सकती हूँ।
तुम यहाँ भी पढ़ सकती हो,
आपको मुझ पे एतबार नहीं है।
मुझे जमाने पे एतबार नहीं है,
मैं जमाने से लड़ सकती हूँ अम्मा।
ये तुम्हारी गलत फहमी है।
देखो ना बाबा।
देखो बेटा, माँ से इस तरह नहीं बोलते। हम तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद थोड़ी कर रहे हैं, तुम बेशक पढ़ो, लेकिन तुम अपना सामान हॉस्टल से लेकर यहाँ चली आओ, दैट्स ऑल।
अब तो मुझे ये भी यकीन नहीं रहा बाबा कि आप मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे, क्योंकि जमाना तो है ही खराब। अच्छा सिर्फ उन लोगों के लिए जो खुद अच्छे, और मैं तो हूं ही बुरी।
मैं तुम्हारी मदद करूं? जिस मूड में तुम पैकिंग कर रही हो ना, ये सारी चीजें यूं ही पड़ी रहेंगी।
मुझे किसी हमदर्द या मददगार की जरूरत नहीं है।
हमदर्दी या मदद करना दोस्त की ड्यूटी होती है, दोस्ती का मकसद तो नहीं। तुम्हारी हालत उस सिपाही की सी लग रही है जिसने बीच मैदान में हथियार डाल दिए। अब इतनी निहत्ती भी नहीं हुई तुम।
हथियार डालने और हथियार छीन लेने में फर्क होता है मारवी।
बगैर हथियार के भी लड़ा जा सकता है,
बगैर हथियार के लड़ने वाले को बीच राह में ही मार दिया जाता है।
तुम मर भी गई तो क्या हुआ? तुमने फैज साहब का वो शेर नहीं सुना? मगर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो, डर कैसा। अगर जीत गए तो क्या कहना, हार भी गए तो बाजी मात नहीं।
कुछ समझ नहीं आता है, मुझे खौफ सा महसूस होने लगा है, जैसे मेरे अंदर कोई खतरे की घंटी बज रही हो। यूं लगता है जैसे मैं आसमान में उड़ती हुई वो पतंग हूं जिसकी डोर किसी और के हाथ में आ गई हो। जैसे
पगली, कुछ नहीं होने वाला, और तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। तुम एक मॉडर्न फैमिली से ताल्लुक रखती हो।
मॉडर्न फैमिली, क्या खूब कहा है। हाँ, हम मॉडर्न ही तो हैं। अम्मा हवेली में बैठने के बजाय इनॉग्रेशंस पे जाती, झुग्गियों में सिलाई मशीनें और पुराने कंबल बांटती, औरतों की आजादी पे तकरीर करती, और बाबा पगड़ी बांधने के बजाय और हुक्का पीने के बजाय सूट पहनते, सिगार पीते, और मैं कार ड्राइव करती हूँ और नए नए कपड़े सिलवाती हूँ।
बहरा, एमए तुम्हें करना है, और इसके लिए चाहे तुम्हें लड़ना ही क्यों ना पड़े। हाँ, हॉस्टल छोड़ने वाला फैसला कुछ गलत नहीं भाई, जब तुम्हारा घर शहर में है तो फिर
हॉस्टल छोड़ने वाला फैसला गलत नहीं। कमरा चाहिए था ना तुमको, अब फैल के रहना इस कमरे में।
तुम्हारी याद में मैं गीत लिखा करूंगी।
गीत नहीं, मरसिया लिखना, और वक्त मिल जाए ना तो इस गुमनाम कब्र पे अगरबत्ती और लोबान जलाने भी आ जाना।
फिलहाल तुम्हारा पोस्टमार्टम तो लेने दो, बाद के मामला बाद में तय करेंगे।
ये तुम फाइल क्यों निकाल रहे हो?
फिर क्या करूं?
अरे अब्बा, बाहर जाकर घूम फिर, सारा दिन दफ्तर में मगज खपाता है, फिर शहर से आकर जनानी की तरह घर में पड़ा रहता है।
बाहर जाते हुए मुझे डर लगता है चाची।
डर लगता है? बाहर तेरे पीछे कुत्ते दौड़ते हैं क्या?
यूं ही समझो।
देखे जितना मेरा दिमाग है ना, तो बात भी वैसी सीधी सीधी कर।
बाहर सब लोग मेरा मजाक उड़ाते और मारवी के बारे में न जाने क्या कुछ बकते रहते हैं वो लोग। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता।
बकते हैं वो लोग, भौंकते हैं, मुझे इन सब के नाम तो बता, मैं सबकी माओ की जाकर चुटियाएं ना खेचू। अरे माडू ही मेरा नाम नहीं।
चाची, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी तो नहीं कर सकते उनका।
मेरी मारुल जैसा कोई इस गोठ में है? कोई नहीं। जलते हैं लोग तभी तो भगते हैं, भगते हैं तो बकने दो, मुझे क्या, मेरे अंगूठे को परवाह नहीं है। मेरी मारुल सदा सुखी रहेगी, खुश रहेगी। मेरी मारुल तो राज करेगी, राज।
बताओ कि तुमने चारों तरफ बदतमीजी क्यों फैला रखी?
अरे भाई ये बदतमीजी नहीं, एहतजाज है मेरी जान।
एहतजाज? अच्छा, एहतजाज ऐसा होता है? शर्म करो लैला, शर्म करो। ये एहतजाज तुम्हें कुछ नहीं देगा।
तुम बैठो तो मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ।
नहीं, मैं बैठने नहीं आई, मैं खड़े खड़े तुमसे दो बातें करने आई थी, और मुझे ट्यूशन पढ़ाने भी तो जाना है। मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि मेरी लैला किस साल में है।
बैठो।
देख लिया मेरा हाल? इससे तो अच्छा होता कि तुम अपने गेट के बाहर टेंट लगाकर भूख हड़ताल पे बैठ जाती। कम से कम आते जाते लोग तुम्हें फूलों के हार तो पहना जाते।
तुम आ गई हो, मेरे लिए यही काफी है। फूलों के हारों की मुझे कोई जरूरत नहीं, और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं भूख हड़ताल पे ही हूं, कुछ नहीं खाया है मैंने कल से।
क्या,
इतना कमजोर समझा था क्या मुझे?
बहुत बुरी हो तुम, और इस वक्त तुम बहुत बुरी लग रही हो। लैला, लैला हॉस्टल छोड़ देना इतना बड़ा अलमिया नहीं है जिसके लिए तुम अपने आप को अजियत दो। कहां खो गई? बदली, अभी तो मैं तुम्हारे पास बैठी हूं।
अरे यश, तुम इतने रंग निकालने लगी हो? हाँ, हॉस्टल छोड़ देने की बात नहीं है मारवी, एक दुख सा दिल पर बोझ बन गए। अम्मा को मुझ पे यकीन ही नहीं रहा है कि मैं इस बुरे जमाने से लड़ सकती हूं, अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूं। मेरी हिफाजत के लिए क्या सिर्फ ये चार दीवारें काफी हैं?
पगली, ऐसा नहीं है, अभी बहुत से रास्ते खुले हैं।
जिन पर चलकर ये साबित किया जा सकता है कि तुम अपनी हिफाजत खुद कर सकती हो। लेकिन लैला ये सब कुछ बंद करो, ये मायूसी तुम्हें सिर्फ कुएं का मेंढक बना देगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उठो और तमाम चीजें समेटो
तुम्हारे जाने के बाद।
क्यों, अभी करो, मेरे जाने के बाद तुम फिर सफेद मातम बिछा दोगी। चलो शाबाश, उठो और अपने लिए कुछ खाने को मंगवाओ।
पड़े हैं ना ये सैंडविचेस सुबह से,
तुमने खाए नहीं। लैला तुम तो बहुत बनकते हो।
क्या क्या करूं, चीजें समेटूं, रोजा इफ्तार करूं, कैसी पत्थर दिल दोस्तों, दो घड़ी गम भी नहीं मनाने देती।
अरे चलो मुंह खोलो, मुंह खोलो, बड़ा सा एक और खाना है। पियानो तो बहुत अच्छा बजाते हैं
जी। बजाना क्या, असल में बस यूं समझिए कि पियानो में छुपने की कोशिश कर रहा हूं। कब आए?
बस थोड़ी देर पहले।
प्लीज।
नहीं मैं चलूंगी, मुझे ट्यूशन पढ़ाने भी जाना है। वो आपसे एक बात कहनी थी।
जी जी कहीं।
कुछ सवाल, कुछ इश्तियाक।
क्या
आप सब लोग एक दूसरे से इतने लातालुक क्यों हैं? सब अपनी अपनी दुनिया में मगन।
जी मैं समझा नहीं, क्या मतलब?
लैला बहुत परेशान है आपसे।
असल में ऐसा है कि हम सब अपनी अपनी जगह परेशान हैं, हालांकि देखा जाए तो ऐसी कोई परेशानी नहीं,
मगर कुछ परेशानियां तो जन्म सी होती हैं।
हाँ होती तो है, सब उनको हल भी किया जा सकता है।
कैसे?
यही कि सरेंडर किया जाए।
कितने सेल्फिश हैं आप लोग।
थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। वैसे हमारे बारे में आज तक किसी ने इस कसम की राय नहीं दी।
अच्छा मैं अब चलती हूं।
सुनी
जी
क्या कहना था उन्हें? कुछ नहीं कुछ नहीं।
हेलो मालवी।
वालेकुम आंटी।
वालेकुम सलाम, कैसी हो?
ठीक हूँ।
लैला से मिलने आई थी?
हाँ।
पढ़ाई कैसी चल रही?
बस आंटी ठीक चल रही।
देखो तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो बिला तकल्लुफ कह देना।
जी जरूर, शुक्रिया।
भाई आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैं बड़े फखर से लोगों में तुम्हारी बात करती हूँ। तुम जैसी ही लड़कियां बेचारी औरतों पर मुसल्लत फर्जखुदा रवायात को तोड़ सकती हैं, वरना ये फ्यूडल सिस्टम तो लड़कियों को उभरने ही ना दे।
जी शुक्रिया।
तुम जा रही हो?
जी आंटी।
ठीक है, मैं भी बहुत थकी हूँ, फिर कभी तुमसे फुर्सत में बात होगी। ओके खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
चाचा चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी।
हाँ
क्या हाल है मास्टर?
हाँ आजा बैठो बैठो बैठो। बस अल्लाह सही का शुक्र है
मास्टर। सुना है वडेरे ने स्कूल बंद करवा दिया तेरा?
हाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस।
हो साईं बरोबर। फिर भला आधा मास्टर अब हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे?
अल्लाह साईं के आसमान के नीचे।
बात ऐसी थी चाचा मास्टर, अगर तू मारे को पढ़ने के लिए न भेजता तेरे पे ही मुसीबत ना आती। फिर भेज भी दिया था तो फोक को रिश्ता देने से इनकार न करता। भला वो कहाँ तू मामूली स्कूल मास्टर, कहाँ वडेरे का कमदार फोग का।
अरे पागल पागल है, मारू मेरी धी है, मेरी मर्जी है, जहां चाहूं भेजूं जिसको चाहूं दे दूं। अरे ये बकरी थोड़ी है जो वडेरे के कमदार की चारपाई से बांध दूं। अरे देखना जब मेरी बेटी अफसर बनकर आएगी तो तुम्हारे जैसे हजारों आदमी दरखास्त लेकर उसके आगे पीछे फिरेंगे। और हाँ एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर आइंदा किसी ने मेरी बेटी का नाम लिया तो मैं उसका सिर फाड़ दूंगा।